جنوری 14 اور 15،
کبھی 14 کبھی 15 کو مکر سنکرانتی آتی ہے. یہ ماگھ کا تیسرا دن ایسے ہوتا ہے ماگھ مہینے کا. اس دن چیتنیا مہاپربھو نے سنیاس گرہن کیا. چیتنیا مہاپربھو کا یہ سنیاس کا دیوس ہے. اس کے بعد سو 18 میں بھکتی سدھان سرسوتی گوسوامی پرابھوپاد نے 44 سال کی عمر میں سنیاس گرہن کیا. اس کے بیچ میں سیفران کپڑے والا سنیاسی ویشنو میں نہیں رہا. چیتنیا مہاپربھو پہلی بار ویشنو, بھگوان ساکشات شری کرشن ہوتے ہوئے سیفران کپڑے پہن کے سنیاس دھارن کیا, اور پھر بھکتی سدھانت سرسوتی مہاراج نے 44 سال میں, چیتنیا مہاپربھو 24 سال کی آیو میں سنیاس لیا اور بھکتی سدھانت سرسوتی گوسوامی مہاراج 44 سال کی آیو میں سنیاس گرہن کیا. اور تب سے اس کے بعد سنیاس گوریا مٹھ میں اور پھر اسکان میں لال کپڑے میں شروع ہوا سیفران میں. اس سے پہلے جو بھی ویشنو مہاپربھو کے بعد ہوئے ہیں وہ سب پرم ہنس تھے. گوسوامیوں نے سیفران کپڑے نہیں پہنے, وہ سب پرم ہنس تھے. تو یہ سارا رہسیہ مہاپربھو سے لے کے بھکتی سدھانت سرسوتی تک اور پھر اسکان تک سنیاس کے پیچھے ادیش کیا ہے. مہاپربھو نے سنیاس کیوں لیا, اس کے باہر کے کارن کیا ہے, انترنگ کارن کیا ہے, بھکتی سدھانت سرسوتی مہاراج نے سنیاس کیوں لیا, اس کا کیا ادیش ہے, اور پھر اسکان میں پرچار کے لیے سنیاس ابھی پرچلت ہے اس کا کیا لکش ہے. تم بات کر رہے تھے مکر سنکرانتی کے دن جب مکر راشی میں سوریہ پرویش کرتا ہے, اس دن چیتنیا مہاپربھو نے سنیاس لینے کا نشچے کیا. اترائن شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد 1918 میں یا ایسے 1930 ہے ابھی اگزیکٹلی بھکتی سدھانت سرسوتی مہاراج نے سنیاس گرہن کیا. اس کے بیچ میں کوئی بھی سنیاس کپڑے والا نہیں ہے. مہاپربھو کے بعد بھکتی سدھانت سرسوتی نے سنیاس لیا. تو ان دونوں کا ادیش کیا ہے سنیاس کا, یہ دیکھنا ہے. اس کا مطلب سنیاس ہمارا پرپز کیا ہے سنیاس کا. تو باہری درشٹی سے یہ شلوک چیتنیا چریتامرت میں ہے. چیتنیا مہاپربھو کہے مورے نا مانیلا سب لوک ہبے ناس, مورے نہ مانیلا میرے کو نہ مان کر سبھی لوگ ہبے ناس, سارے ہی لوگ وشے ناس ہو جائیں گے. اتھی لاگی کرپا کرپار در, ان کے اوپر مجھے کرپا کرنی ہے, کرپار در پربھو کریلا سنیاس. چیتنیا مہاپربھو نے سنیاس لیا اور شری پربھوپاد اس کے بھاوارتھ میں لکھتے ہیں. بھاگوت میں لکھا ہے کیرتناد ایو کرشنسیہ مکت سنگ پرم برجیت, 12 اسکند بھاگوت کا یہ ہے. تو اس کا ارتھ ہے کیول سادھانت کرشن نام ہرے کرشن منتر کے جب سے ہم مکت ہو کے بھگوت دھام جائیں گے. مکت سنگ مطلب بندھن سے مکت ہوں گے. پرم ورجیت, ورجیت کو ایسے لے گو परम पद परम ब्रजित मतलब गोलोक धाम जाएंगे। ब्रजित शब्द का अर्थ ये लेना सीधा चाहिए, ऐसे नहीं मुक्त हो जाएंगे नहीं। जेल से कोई आदमी निकले लेकिन बाहर कहीं जाने के लिए जगह नहीं हो तो गेट पे ऊपर खड़ा किस काम का। तो मुक्त होना का जेल से निकलना है, लेकिन कोई लेने वाला है कहीं जाने की जगह भी तो होना चाहिए ना। इसलिए मुक्ति नहीं मांगते वैष्णव, क्योंकि उसमें जेल के दरवाजे के ऊपर खड़ा होना है। बाहर से तो निकला है लेकिन जाए कहां, और तो कोई संबंध है नहीं तो जाएंगे कहां। इसलिए सच बोलते हैं आपको, बहुत से जेल के अंदर ऐसे बंदी है जो निकलना नहीं जाते अंदर से। वो कहते बाहर लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या कहां जाए, इससे अच्छा है यहां 10-20 आदमी है रोज बैठे हैं बात करके टाइम तो पूरा कर देंगे। तो ये परम वृजित मुख्य शब्द है इसके अंदर। और फिर श्री प्रभुपाद कहते कृष्ण भावना केवल चेतन महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हो सकती है, केवल कृष्ण चेतन महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हो सकती है। जब तक चेतन महाप्रभु और उनके जो परिकर है उनकी कृपा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ जा सकता। से अभी भजन आप गए रहे थे, सिर्फ चेतन महाप्रभु नहीं, नित्यानंद प्रभु, फिर अद्वैत आचार्य, फिर रामचंद्र संग मांगे, यहां तक जो भी परिकर है उनका संग नहीं मिलेगा तब तक हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते, प्रभुपाद जी कहते हैं। और यही कारण था कि चेतना महाप्रभु ने संन्यास लिया कि बहुत जल्दी लोग सन्यासी का सम्मान कर लेते हैं। और इस घटना से पहले हुआ क्या था, चेतना महाप्रभु जब पढ़ाते थे निमाई पंडित थे, तो एक दिन बैठे बैठे वो वृंदावन के भाव में गोपी 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 ऐसे उच्चारण किया तो एक ब्राह्मण सामने आके कहा क्या 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 गोपी गोपी कर रहा है, कृष्ण कृष्ण बोलो। और तब महाप्रभु भाव गोपी में था, तेरा कृष्ण नहीं चाहिए, हमको बाली को पीछे से मारा था वो कृष्ण ना, वामन देव का सब कुछ लूट लिया था वो कृष्ण ना, नहीं चाहिए। ये गोपियों का भाव है, गोपियों ने ऐसे कहा ये कृष्ण कौन सा तुम बोल रहे हो, जिसने पेड़ के पीछे से बाली को मारा था वो ना, और दूसरा बलि महाराज ने सब कुछ छीन लिया फिर पाताल में से सूतल लोक में भेज दिया वो कृष्ण की बात कर रहे हो, नहीं मारो मारो पकड़ो। वो लड़का तो वहां से भाग गया लेकिन दूसरे सब लड़कों को जाके ब्राह्मणों को कहा ये निमाई पंडित गोपी गोपी क्या करता है, आज तो मैं बच के आ गया। उन्होंने कोई प्लान बनाया तो चेतन महाप्रभु नित्यानंद को कहते हैं कि ये ब्राह्मण मूर्ख अपराध कर बैठेंगे, इसलिए अब मैं निश्चित रूप से सन्यासी बन के इन्हीं ब्राह्मणों के घर के अंदर भिक्षा लेने जाऊंगा, तब ये मेरा अपराध नहीं करेंगे, मारेंगे भी नहीं सन्यासी को और शरण भी ग्रहण करेंगे। ये बहुत ये ऐसे है जैसे कभी हमने आपको कहा होगा विदुर धृतराष्ट्र ने घर से निकाला और वापस धृतराष्ट्र का उद्धार करने पहले आया, ये वैष्णव की पहचान है। जिसने घर से निकाला उसी का उद्धार पहले किया, आके जन्म सार्थक किया और कर पर उपकार किसका उपकार किया, धृतराष्ट्र का वापस आके। तो महाप्रभु कहते इन ब्राह्मणों का कैसे उद्धार करें, और दूसरा सन्यासी मायावादी है सारे और वो कृष्ण अपराधी है, और मैं जब अवतार लेके आया हूं तो उनका उद्धार होना चाहिए, इसके लिए कैसे उनका उद्धार होगा, मैं सन्यास भी उन्हीं उसी मायावादी स्कूल में लूंगा तो फिर वो मेरे को सुनेंगे। लेकिन बुद्धिमता सिर्फ ये है कि मायावाद सन्यास का नाम महाप्रभु के पीछे नहीं लगाए, भारती पीछे नहीं लगाए, केशव भारती से सन्यास लिया फिर भी केशव कृष्ण चैतन्य भारती नहीं लगाया गया पीछे। इसका मतलब सन्यास लिया उनसे लेकिन कोई भी सन्यास का वो नाम ग्रहण नहीं किया। गौरिया मठ में भी कुछ नाम सन्यास के वो अभी भी रखते हैं, 108 सन्यास के नाम विष्णु स्वामी के समय से चलते आ रहे हैं, उनमें से केवल 10 नाम शंकराचार्य ने लिए थे, उनमें से भी 3 मुख्य नाम है सरस्वती भारती और पुरी, पहला नंबर सन्यासी का सरस्वती, दूसरा नंबर भारती, तीसरा नंबर पूरी, ये इनकी कैटेगरीज है। तो भारती सन्यासी से तो सन्यास तो लिया महाप्रभु ने, लेकिन भारती पीछे नाम नहीं रखा। कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी का नाम है, ब्रह्मचारी का नाम होता है कृष्ण चैतन्य दास। सन्यास लेता है तब उसके पीछे कुछ लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को सन्यास के प्रैक्टिकली सन्यास के एक फॉर्मेलिटी पूरी की, सन्यास लिया ही नहीं। एक दृष्टि से देखा जाए तो सन्यास का नाम तो ग्रहण ही नहीं किया। तो ये बाहर का कारण है कि चेतना महाप्रभु, और फिर और जगह पे ये कहा है कि पांच तत्वों का उद्देश्य था कि सारे विश्व को कृष्ण प्रेम में डुबाना है। तो सारे विश्व को कृष्ण प्रेम में डुबाना है तो घर छोड़ेंगे तब जगह जगह जाएंगे ना, घर छोड़ेंगे तब सब जगह जाएंगे, घर नहीं छोड़ेंगे तो सब जगह कैसे जा पाएंगे। तो सब जगह अगर प्रचार करना है तो संन्यास लेने का अर्थ ये है कि आप छोटे घर को छोड़ के बड़ा घर स्वीकार करते हैं। फिर और जो हमारे को एक सिद्धांत के हिसाब से जो चीज आ रही है सामने वो ये है कि भगवान के सद्गुण हैं, उनमें से कौन कौन से गुण हैं छह भगवान के, सद्गुण संपन्न भगवान कहते हैं, क्या क्या गुण है? हाँ, ब्यूटी। चेतना महाप्रभु बहुत सुंदर थे, निमाई, ये तो सभी जानते हैं। तो कितने चेतना महाप्रभु सुंदर थे, और क्या विजडम, वो इतने उस वक्त के निमाई पंडित थे कि केशव कश्मीरी को उन्होंने दिग्विजयी केशव पंडित को हराया था, तो वो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, बुद्धिमान हो गए। रिनंसिएशन दिखाने के लिए संन्यास ले रहे, भगवान का एक छठ गुण में रिनंसिएशन भी है, सब कुछ का परित्याग करना। कृष्ण अवतार में यदुवंशी को अपने हाथ से संहार करना, ये उनका त्याग है। गोपियों को रासलीला से छोड़ के जाना उनका त्याग है। और यहां महाप्रभु अपने षड गुण में त्याग के गुण, त्याग का गुण दर्शा रहे हैं कि त्याग भी भगवान के छह गुणों में एक गुण है, उसको ठीक तरह से प्रतिपादित करना है। तो महाप्रभु ने सन्यास का निश्चय किया और करने के समय भाग के जाके सन्यास नहीं लिया, नित्यानंद को बुलाया, उसको हाथ पकड़ के बोला, नित्यानंद अब मैं घर में नहीं रहूंगा, ये समाचार पांच आदमियों को पहुंचा दो। ये भी कोई रहस्य की बात है, पांच आदमियों को ये समाचार बता दो कि मैं सन्यास लेने जा रहा हूं। सबको बताने की जरूरत नहीं है, किसको बताओ? एक तो मेरी जननी को बताओ, सची माता को, गदाधर को बताओ, और कौन आचार्य है, चंद्रशेखर आचार्य, पांच नाम यहां लिखे हैं, पांचों को बोल दो और यहां नहीं आए मेरे घर में, ये मैं गंगा पार करूंगा उस तरफ मुझे मिलेंगे। 28 सुनो सुनो, नित्यानंद स्वरूप गोसाई एक कथा भांगी वे सबे पंच जनद ठाई। नित्यानंद गोसाई मुझे आज्ञा भी दो और सुनो, और पांच आदमी को बोलना, और पांच आदमी कहां जाऊंगा वो स्थान भी बोला है। स्वरूप स्थान है, किसको कहना, पांच जन स्थान है, पांच नाम, क्या अभी याद थे क्या क्या क्या, क्या नाम है, गदाधर, माता, चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद मुरारी, मुकुंदा कीर्तन बहुत अच्छा मुकुंदा ने किया था, इनाम में अभी आ जाएंगे। और फिर उस दिन चेतना महाप्रभु बहुत सुंदर अद्भुत कीर्तन करने लगे, बहुत से लोग कीर्तन में भाग लेने लगे। और कीर्तन में भाग लेके अभी दोपहर को बैठे हैं महाप्रभु, तो शिवास एक क्या कहेंगे आप, जैसे लौकी जैसा फल लेके आए प्रसाद के लिए। महाप्रभु ने कल तो मैं संन्यास लूंगा, कैसे इसको खाऊंगा, इतने प्रेम से लाया है। माता सच्ची को बोला इसी का आज ही कुछ बनाओ। और तब कोई अज्ञात व्यक्ति दूध लेके आया, नाम नहीं है उसका, कोई भाग्यशाली दूध लेकर आया। महाप्रभु ने कहा दूध और इन दोनों को मिलाओ, माता जी को कहा, और वो भोजन भी किया। और शाम को बहुत से लोग महाप्रभु से मिलने आए, माला भी लाए, चंदन भी लाए। अब ये लोग सबको महाप्रभु ने कीर्तन के बाद सबको माला पहनाई। इसके ऊपर बहुत बड़ा भावार्थ लिखा है कि चेतना महाप्रभु की माला पहने का अधिकारी वो होता है जो चेतना महाप्रभु का प्रचार करे। और सबको माला पहनाते के समय चेतना महाप्रभु कहे कृष्ण का प्रचार करो, कृष्ण का प्रचार करो सब जगह, कृष्ण प्रचार करो सब जगह, सब ठाई जाके कृष्ण प्रचार करो। आप सब अपने अपने घर जाओ लेकिन कृष्ण का प्रचार करो। इन सबको ये कहने के बाद रात को अपने घर में जब सोए तो उनके साथ एक तो था हरिदास ठाकुर और एक था अद्वैत, हाँ नहीं, गदाधर और हरिदास रात को साथ ही उधर सोए महाप्रभु के साथ। और ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, दो घंटे पहले सूर्य उगने से महाप्रभु ने लिखा है नासिका का चलन देखा। ये पुराने जमाने में लोग जब कोई काम करने के लिए निकलते थे ना, नासिका का स्वर देखते थे। जिस वक्त नासिका का राइट स्वर चलेगा उनके हिसाब से या लेफ्ट चलेगा तब कहते हैं अभी निकलने के लिए कदम बढ़ाओ। तो श्लोक में लिखा है महाप्रभु ने, अभी भी हम अपने पुराने लोगों को देखते हैं ना कोई काम करने, ठहरो थोड़ी देर के बाद चलते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हाँ अब चलो। तो ये स्वर देखने का कोई विधि है। महाप्रभु ने स्वर देखा और निकले, लेकिन सारी रात सच्ची माता नहीं सोई और दरवाजे के ऊपर वहीं बैठी रही जहां से महाप्रभु को जाना है। अब सच्ची माता और महाप्रभु के बीच में ये वार्तालाप होती है और कोई नहीं है। अब जा रहे संन्यास रहते चेतन महाप्रभु और सच्ची माता को क्या कह रहे हैं, इतना आपने पालन पोषण मां आपने मेरा किया, आपके सुख का तो कभी आपने ध्यान ही नहीं रखा। और अन्य स्थानों पे कहा इससे पहले मैं आपका दो बार बेटा हुआ हूं, कौशल्या तो आप थी मैं राम बना था, फिर आप देवकी थी मैं कृष्ण बना था, और दो बार आपका बेटा बनूंगा। और वो दो बार कौन सा बेटा बनूंगा, मैं श्री विग्रह में जब प्रकट हूंगा तो भगवान मैं श्री विग्रह में साक्षात रहूंगा, तब आप पृथ्वी के रूप में मेरी माता रहोगी। और दूसरा मैं हरि नाम के रूप में प्रकट हूंगा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तब आप मेरी मां जीभा आप मेरी मां रहोगी, टंग यू विल रिमेन माय मदर। इसका अर्थ यह है कि हमारी टंग भगवान की माता है, इसलिए इसको बेकार की चीजें चखाने की आदत मत डालो। ये बहुत बड़ी बात लिखी है महाप्रभु ने कि दो बार और मेरी मां आप माता बनोगी, पृथ्वी के रूप में जब मैं अर्च वग्रह बनूंगा के रूप में प्रकट हूंगा और जीभा के रूप में जब हरिनाम के रूप में प्रकट हूंगा, नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो इसलिए कभी हम कहते हैं कहीं से ऐसे, हर चीज का एक आभूषण है, कान के लिए तो बाला है, नाक के लिए भी कोका है, जीभा का आभूषण क्या है माता जी, जो कुछ है आपके पास, जीभा का आभूषण भगवान का नाम है। ये जबान भगवान की माता का स्थान है, इससे नाम प्रकट होता है उच्चारण करने के लिए, तो कितना सावधानी से इस जीभा का कितना उपयोग और कैसा उपयोग करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय एक महाप्रभु ने दे दिया है भक्तों के लिए कि इससे बोलो तो केवल कृष्ण बोलो और खाओ तो केवल कृष्ण प्रसाद खाओ, इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं होना चाहिए। ग्राम्य कथा नहीं बोलनी चाहिए इसलिए बोला, ग्राम्य कथा मत बोलो। ग्राम्य कथा का मतलब गांव नहीं है, ग्राम का मतलब इंद्रियों की कथा, इंद्रियों के विषय की बात नहीं। ग्राम्य का अर्थ गांव नहीं है, यहां ग्राम्य कथा का अर्थ है इंद्रियों और उसके विषयों की बातें मत करो, ग्राम्य कथा ना बोलेगा। बस ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जीभा से, क्योंकि जीभा भगवान की माता है, तो भगवान की माता के लिए कितना सम्मान होना चाहिए। और फिर महाप्रभु ने सची माता के चरणों की रज ली, अपने माथे की लगाई और सची माता की परिक्रमा की। मां के आंखों से केवल आंसू बह रहे थे, मां तुम्हारी स्तब्ध हो गई, वहां से हिली नहीं, मूर्ति बन गई। लेकिन महाप्रभु को कहा हम चले आपके साथ, गदाधर हरिदास ने बोले नहीं, अब मैं अकेला जाऊंगा। संन्यास का मतलब अकेला, गंगा पार किया और दूसरी तरफ रवाना हुए। 30 किलोमीटर वहां से दूर है कटवा ग्राम, माता दरवाजे के ऊपर ही ऐसे की ऐसे पड़ी थी। जब सुबह सवेरे लोग आए महाप्रभु का दर्शन करने तो मां को वहां देखा, ये क्या है, और माता जैसे एक ऐसे भाव में थी, वैष्णव हो ना, सब भक्त हो ना, जो कुछ अंदर पड़ा ले जाओ, ये सब विष्णु का वैष्णव के लिए है, जो चाहिए उठा के जाओ, मेरा मन करेगा मां मैं चली जाऊंगी। हुआ क्या मेरी मां, निमाई चले गए। अब तो सारे लोग गिर पड़े मूर्छित होके, क्या हो गया, विष्णु प्रिया के साथ क्या गुजरी, उसके ऊपर चर्चा तो अभी समय भी नहीं है करने का। कैसे उनको महाप्रभु ने बात की होगी कि मैं जा रहा हूं संन्यास लेने, लेकिन सची माता के आंखों से अभी तक आंसू बह रहे हैं। सारे लोग इकट्ठे हुए, अब तो श्रीनिवास भी आ गया और सब भी आ गए, कहां गए, क्या हुआ महाप्रभु, बहुत समय तक इनकी ये चर्चा हो रही है। और उस तरफ महाप्रभु को वो पांचों गंगा पार करते ही मिल गए जिनको बुलाया था, साथ जो पांच ही व्यक्ति मेरे साथ वहां से आगे चलेंगे। और केशव भारती को जाके प्रणाम करके महाप्रभु कहते हैं आपका बहुत, कृष्ण आपके हृदय में विराजते हैं, आप कृपा करके मुझे संन्यास दीजिए। इसको दूसरी दृष्टि से लिखते हैं कि संन्यास लेने के अंतरंग कारण में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता देके द्वापुर में जाने के बाद अंतिम श्लोक के ऊपर विचार किया, सर्वधर्मान परित्यज, और कहा कलयुग के लोगों को ये तो थ्योरिटिकल में बता के आ गया हूं, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज सिखाएगा कौन, ये शिक्षा कौन देगा, तो मैं स्वयं जाके ये शिक्षा दूंगा, तभी तो वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे ना। तो इसी श्लोक की प्रैक्टिकल शिक्षा देने के लिए स्वयं महाप्रभु ने आने का संकल्प किया। और आने के बाद इसी श्लोक में अब गोपी गीत के 5 अध्यायों में देखेंगे तो पहले अध्याय में कृष्ण गोपियों को धर्म का प्रवचन कर रहे हैं, धर्म आपका ये है, आप आई हैं तो वापस घर जाइए, पति की सेवा कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, बच्चों की सेवा कीजिए, पशुओं की सेवा कीजिए, धर्म का उपदेश कृष्ण दे रहे हैं। और गोपियां क्या है, सर्वधर्मान परित्यजी के स्टूडेंट है, गोपियां सर्वधर्म परित्यजी की कक्षा की है और कृष्ण धर्म का उपदेश दे रहे हैं, और इसको प्रणय गीत कहते हैं। ये पहला अध्याय है, इसमें गोपियों की जो तर्क वितर्क है इसका नाम है प्रणय गीत। प्रणय गीत का मतलब इतना प्रेम का गीत उनका सर्वधर्मान परित्यजी की, वो परिकाष्ठा में आते हैं कि कृष्ण के तर्क और गोपियों के तर्क को जब हाइट पे जाते हैं तब कृष्ण हार जाती हैं और गोपियां जीत जाती हैं। ये प्रणय गीत की महिमा है कि गोपियां जीत जाती हैं, जैसे यशोदा मां जीत गई और कृष्ण हार गए और बंध गए, तो ये कृष्ण की एक विशेष माधुरी ये है लीला की कि वो भक्तों से हारते हैं बहुत ऊपर जाके और उस हारने में उनकी जीत है। अब गोपियों को जब वापस कृष्ण मिले, रासलीला के पंच अध्याय को देखेंगे तो दूसरे में जब कृष्ण हार गए तो रासलीला शुरू हुई, एक कृष्ण एक गोपी हो गई। अब गोपियों ने कृष्ण को देखने के बजाय अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि ओए कृष्ण हमारे साथ है। इस अहंकार को कृष्ण सहन नहीं कर सके और कृष्ण एकदम वहां से गुम हो गए। अब तो गोपियां बहुत छटपटा गए, कृष्ण कहां कृष्ण कहां, चारों ओर वन में ढूंढने लगी। मैंने कहा गुरु को नहीं ढूंढा कि कृष्ण को कैसे मिले, पेड़ को बोले कृष्ण को देखा, वो जो भी सामने आया उससे पूछ रहे कहां कृष्ण है कहां कृष्ण है। और एक गोपी के साथ कृष्ण गए थे राधिका, उसने भी जब कहा कि मैं थक गई हूं मुझे आप उठा के चलिए, तो उसको भी छोड़ के चले गए, वो भी इनको मिल गई। और फिर क्या करने लगी गोपियां, अभिनय करने लगी कृष्ण का, भाई नहीं मिला तो कहां जाएंगे, घर जाएं वापस, घर तो नहीं गई, अभिनय करने लगी कृष्ण का। एक कृष्ण गोपी बन गई, दूसरे को बोलते डरो डरो मत डरो मत, चुनरी ऊपर गए मैं गोवर्धन धारण कर लिया तुम इसके नीचे आ जाओ, तो कृष्णमय हो गई गोपियां। और फिर भी कृष्ण नहीं मिले, तब निर्णय क्या किया, जहां से हम अलग हुए थे वहीं चलते हैं, यमुना के तट पे चलो। गोपी ज्ञान का गीत गाएंगे, कीर्तन करेंगे, कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। और गोपियों ने गोपी गीत का कीर्तन किया कृष्ण, और उस गीत में कहती क्या है, कृष्ण तुम वहां कहां गए हो, वन में हो ना, मैं तुम्हें कहीं पांव में कांटा लग गया तो। कृष्ण का चिंतन कर रही है, अपना नहीं कर रहे हैं। और जब गोपी गीत गाया तो कृष्ण वहां आए, और आते ही कृष्ण ने उस वक्त गोपियों को कहा मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, न पारे अहम, आपने जो सब कुछ मेरे लिए त्याग किया है इसका मैं ऋण चुका नहीं सकता हूं। और ये बात चेतना महाप्रभु के मन में भगवत गीता से आ रही है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्, जैसे कोई मेरे पास आता है मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करता हूं। तो गोपियां तो घर छोड़ के आई थी, परिवार छोड़ के आई थी, तो मैंने कब घर परिवार छोड़ा है। और फिर व्यवसाय आपने के बुद्धि एक एक गुरु नंदना, उनकी बुद्धि तो केवल एक मेरे ऊपर केंद्रित थी और किसी को नहीं देखते थे, लेकिन मैं कृष्ण मेरे भक्त बहुत सबके साथ, मैं तो बहुत शाखाओं से उनके साथ व्यवहार करता हूं। तो अब मुझे संन्यास लेके वैसे ही व्यवसाय आत्म का बुद्धि केवल कृष्ण के लिए, जैसे राधिका का भाव अथवा गोपियों का भाव है उस भाव में मुझे, और संन्यास लेके सब कुछ परित्याग करना पड़ेगा, तभी मैं गोपियों का ऋण चुका सकूंगा। तो इस दृष्टि से संन्यास का अंतरंग जो कारण इसका बताया गया है कि कृष्ण जब गीता के इस उपदेश को भक्त के रूप में आए कि हम कैसे शरणागति लेंगे, और शरणागति के साथ उनको ये भी रहा कि शरणागति का उदाहरण तो सिर्फ गोपियां, और कोई शरणागति का उदाहरण है ही नहीं, सर्वधर्मान परित्यजा की कक्षा में केवल गोपियां आती हैं। और इसलिए उसमें जब शब्द व्रज आता है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम व्रज शब्द जब कहा कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने, लेकिन उस वक्त कृष्ण पूरा ऐसे शेक हो गए कि मेरे नाम तो ब्रज का लिया, लेकिन ब्रज की गोपियां ही केवल इस श्लोक को समझने और इसकी अधिकारी, और कोई तो है नहीं। तो ब्रज शब्द से कृष्ण का भाव बिल्कुल ब्रज के भाव में गोपियों को ही देखा, जैसे कि वही इस कक्षा की है कि सर्वधर्म परित्यज। और महाप्रभु ने वही जो श्लोक है उसका उसका दर्शन कराया है कि कैसे एक भक्त को इस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। 500 साल हो रहे हैं महाप्रभु के संन्यास को इस साल अभी, तो 524 साल महाप्रभु के अवतार को हो गए हैं, और संन्यास लेने का एक ही उद्देश्य। और फिर उस उद्देश्य के अंतर्गत बहुत से प्रकाशानंद आदि मायावादी सन्यासी भी वैष्णव बने, और महाप्रभु ने कितने ही ब्राह्मणों का उद्धार किया, जिसमें से गोस्वामी 4-5 गोस्वामी ब्राह्मण है, तो उन ब्राह्मणों ने फिर अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए वो भी आगे चल के इस मार्ग के ऊपर चले। तो उदाहरण नहीं बनेगा तो आचार्य कैसे बनेगा। तो महाप्रभु अपने आचरण के द्वारा एक समय के ऊपर संन्यास के अंतर्गत प्रचार करने का कार्य करना चाहिए।
ये दृष्टिकोण दर्शा रहे प्रचार की दृष्टि से और सबको शिक्षा देने के लिए। अब जब भक्ति विनोद ठाकुर ने चेतना महाप्रभु के प्रचार को अंग्रेजी आदि भाषाओं में लिखा कि सब जगह प्रचार होना चाहिए, तो उस भाव को ग्रहण करते भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पहली बार सन्यास के कपड़े पहने। क्यों के पहने? प्रभुपाद जी उसके लिए लिखते हैं कि कलयुग जैसे बढ़ेगा, वैष्णव परमहंस होता है, वैष्णव परमहंस होता है, त्रिगुण अतीत होता है, निस्त्र गुण भाव वैष्णव होता है, तीनों गुणों से ऊपर होता है वैष्णव, ब्रह्म भूया या कल्पते निस्त्र गुणा, ये वैष्णव की स्थिति है। और वैष्णव हमारे गोस्वामी उस स्तर के ऊपर थे, इन्होंने महाप्रभु से लेकर भक्ति विनोद ठाकुर तक वो सब सफेद कपड़े में ही रहे, व्रत होते हुए भी सन्यासी मतलब परमहंस रहे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उसी समय में देखा कि सफेद कपड़े पहनने के बाद वो नकुल तो कर रहे हैं गोस्वामियों का, लेकिन आचरण वैसा नहीं है, इसलिए वर्ण आश्रम के अंतर्गत रहना चाहिए, उससे ऊपर उठने का अधिकार हमको नहीं है, इसलिए सन्यास तो वर्ण आश्रम के अंतर्गत आता है, इसलिए हम उनसे छोटे हैं, इसलिए सन्यास लेना, अपने आप को छोटा दिखाने के लिए सन्यास लिए, बड़ा दिखाने के लिए नहीं लिया कि हम उस कक्षा में नहीं खड़े हो सकते हैं, इसलिए सन्यास उन्होंने ग्रहण किया। और फिर सन्यास ग्रहण करने का उनका विशेष उद्देश्य यही था कि तब भी सन्यास का सम्मान ज्यादा था, प्रचार की दृष्टि से सन्यास का तभी भी महत्व ज्यादा था। लेकिन प्रभुपाद ने आगे चल के कहा जितना सन्यासी को सम्मान लोग पहले देते थे, इतना अभी कोई पीएचडी होगा तो उसको लोग सन्यासी के बराबर सम्मान देंगे। प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों को कहा आप पीएचडी करो और आप जब प्रचार करने जाओगे तो आपको लोग सन्यासी की तरह पढ़े लिखे सर्किल में सम्मान देंगे। तो इसका अर्थ है कि सन्यास इस्कान में या महाप्रभु का सन्यास, क्योंकि ब्रह्मचारी का नाम ही रखा, तो ये सन्यास प्रीचिंग की दृष्टि से है, ये सन्यास प्रीचिंग की दृष्टि से है और वैदिक वर्ण आश्रम के अंतर्गत है। इसलिए अंतिम समय में प्रभुपाद जी ने कहा हम बहुत प्रयास किया कि हम वैष्णव स्थापित करने का कर रहे हैं, लेकिन कलयुग है, वर्ण आश्रम के अंदर रहकर ही प्रचार करना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, देवी वर्ण आश्रम की स्थापना हमारे लिए। ये अंतिम समय की प्रभुपाद जी मायापुर में कि वर्ण आश्रम में कम से कम सत्वगुण के स्तर के ऊपर, ब्राह्मण के स्तर के ऊपर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो महाप्रभु के सन्यास के कारण हम सबको ये बहुत सरलता के साथ कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ जो असंभव था। अन्य युगों में महाप्रभु सन्यास लेके पूरे भारत में भ्रमण किया, उस भ्रमण के अंदर ये छह गोस्वामी में से कोई रामकेली में मिला, कोई बनारस में मिला और कोई मिला श्रीरंगम में। एक ही गोस्वामी चेतना महाप्रभु से सिर्फ नवद्वीप के क्षेत्र के अंदर शांतिपुर में मिला, और कोई नहीं मिला। रघुनाथ दास गोस्वामी एक ही है, पहला गोस्वामी है जो महाप्रभु से मिला था, जो उधर ही मिला उस क्षेत्र में, बाकी महाप्रभु ने जाके दूसरों को ढूंढ के निकाला। और सन्यास लेके नहीं जाते तो ये गोस्वामी तक महाप्रभु, और ये गोस्वामी है तब ये गोस्वामियों ने सारे वैदिक साहित्य के अंदर से भक्ति ग्रंथों का संकलन किया महाप्रभु के आदेश से। और ये गोस्वामी का जो सारा कार्य है, इस कार्य को फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहले प्रचारक है जिन्होंने कम से पूरे भारत के अंदर भ्रमण करके प्रचार किया। तो उससे पहले जो भी भजन आनी थी अपनी भजन में बैठते थे, किसी ने प्रचार नहीं किया। जैसे महाप्रभु पूरे भारत में भ्रमण किया तब गोस्वामी मिले, ऐसे भक्ति सिद्धांत पहले सन्यासी हैं जिन्होंने भारतवर्ष के अंदर चेतना महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार प्रचार किया भ्रमण करके। तो दक्षिण भारत में भी मठ बनाए, तो वृंदावन में भी आके मठ बनाए, तो ये प्रचार उन्होंने किया इसके बाद। और उनके बाद उनके होते हुए गौड़िया मठ ने भी प्रचार का थोड़ा कार्य उनके अंतर्गत किया, उन्होंने सन्यास बहुत सन्यासी बनाए। लेकिन जिस दिन उन्होंने सन्यासियों को बाग बाजार मंदिर में कमरों के ऊपर लड़ते देखा, तब उन्होंने कहा कि ये मार्बल बेच के किताब छापा होता तो अच्छा था। इसका मतलब प्रचार का भाव उनके अंदर से निकल गया, वो सुविधा में अपने आप को, सुविधा क्या मिलनी चाहिए और मान सम्मान कैसे मिलना चाहिए सन्यासी को, ये दृष्टि में फंस गए। फिर प्रभुपाद पहले सन्यासी, भक्ति सिद्धांत के बाद इस लाइन में प्रभुपाद पहले सन्यासी है जिन्होंने इस देश में भी जब तक रहे तो कानपुर में भी प्रवचन किया था, झांसी में भी किया था और बॉम्बे में भी किया था और दिल्ली में भी किया था। उन्होंने प्रयास किया भारत में करने का, लेकिन उन्होंने थोड़ी अपनी आयु को देखा, गुरु के आदेश को देखा और लोगों के यहां रेस्पॉन्स को देखा। बोला जो मेरे गुरु चाहते थे वो मेरी बची हुई उम्र में और इन लोगों के ऊपर सर खपाने से नहीं होगा। ये उन्होंने उनका इंटेलिजेंस था, ये उनकी बुद्धि थी। ये ठीक है कभी 5 रुपया दान दे देंगे, कोई माथा टेक लेंगे, महाराज हमारे घर आइएगा प्रसाद खिला देंगे, लेकिन ये भक्त बन के प्रचार का कार्य करेंगे इनमें से संभावना नहीं है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये दृष्टिकोण से ही पहले सन्यासी को जब भेजा था कि जाओ पाश्चात्य देश में प्रचार करो, उनका अनुभव ये था कि हिंदुस्तानी लोग 200 साल के अंग्रेजों के शासन में हर चीज मेडन इंग्लैंड और अमेरिका को स्वदेशी चीजों से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि साधु भी विदेशी आएंगे तब ये हिंदुस्तानी जागेंगे। ये उनकी रियलाइजेशन थी, इसीलिए उन्होंने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। तो श्रील प्रभुपाद ने वो ही कुछ करके दिखाया जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने थ्योरिटिकली एक बनाया था और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था जो सफल नहीं हुआ था। और उसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्रभुपाद ने जाके पूरे विश्व के अंदर भ्रमण करके जब ये प्रचार किया और 67 में जब पहली बार यहां दिल्ली के अंदर कुछ विदेशी भक्तों के साथ प्रभुपाद जी आए और कीर्तन किया तो भारतवासी बड़ा आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, अरे धोती वाला है, चोटी वाला है, ऐसा तो मेरा दादा होता था, हाँ ये कहां से आ गए, ये हरे कृष्णा जप रहे हैं, अरे वो क्या गया। तो उनके अंदर में जो कॉन्शियंस था उनका जमीर सोजा, जो सो गया था अभी मरा नहीं था, जिनका नहीं मरा था वो जाग गए और जिनका जो सोया हुआ था वो जाग गए, जो मर गया था वो अभी मरा हुआ है। तो बहुत से लोग जाग गए, केवल उन लोगों को देखकर बहुत से लोग भक्त बने। और उनमें से हम अपने जीवन का कर, हम उसको जब भगवत गीता का प्रचार करते हुए देखा तब हमारे अंदर में बहुत पीड़ा हुई कि हमारे को ब्राह्मण के घर में भगवान ने जन्म दिया, ये शास्त्र सब हमारे घर के अंदर जब अलमारी में पड़े हैं, हमने इसको पढ़ा नहीं, वो हम जाके यहाँ पेंट पहन के घूम रहे और ये धोती पहन के हमको सिखा रहा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये यानी हम अपने कर्तव्य से चूक गए, ऐसे हमने को महसूस हुआ। तो इन्होंने ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इंटेलिजेंस थी जिसको प्रैक्टिकली प्रभुपाद ने सिद्ध किया। और सन्यास का यही उद्देश्य था कि सब जगह कृष्ण का प्रचार कैसे हो। तो फॉर्मल सन्यास को फॉर्मल, इसलिए प्रभुपाद का भी दृष्टिकोण ये है, भक्ति विनोद ठाकुर का भी यही दृष्टिकोण है, प्रचार करने के लिए जाए वही सन्यासी हमारी दृष्टि से। इसलिए उन्होंने फिर इसको ऐसे कहा हमारा उद्देश्य प्रचार का है। तो हमारे को इस 500 साल से संदेश क्या लेना चाहिए चेतन महाप्रभु के सन्यास से, हमारा उद्देश्य प्रचार का होना चाहिए। जब इसके अधिकारी हों सन्यास के तो उसके लिए तो जरूर हृदय के अंदर ये एक आग जलनी चाहिए कि एक समय के ऊपर हमको भी सब त्याग करने का अभ्यास करना चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो कभी आगे करना पड़ेगा एक दिन, इस जन्म नहीं किया तो दूसरे जन्म में करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे व्यवसाय आत्मी का बुद्धि वाला, जब तक नहीं होगा काम तब तक आगे काम बढ़ेगा नहीं, इसे कभी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कम से कम प्रचार के कार्य को निश्चित रूप से करें। इस 500 साल महाप्रभु के सन्यास का हमारे लिए संदेश यह है कि मानो इस साल में हम 1000 और आदमियों तक पहुंच सकते हैं भगवान का नाम जप कराने के लिए, इसे संकल्प कर लेना चाहिए। ये आपने देखा था एक बार अभ्यास कुछ लोगों ने किया था अपना दामोदर अष्टकम को लोगों के घरों में करना शुरू किया था, आपने यहां नहीं किया ना, आपने जब दिया था मिडिल ईस्ट में दुबई में, उन्होंने कहा कि इस महीने में केवल 500 घरों में, 9 नए घरों में करना है। तो क्या है, उन्होंने 10 टीमें बना दी, तो 10 टीमें 10 घरों में डायरी से नंबर देखते थे, फोन करते थे, आज हम आपके घर में दीपदान का फेस्टिवल करेंगे। दो उधर वो जाते हैं, वो घर वाले 5-7 आते हैं, तो उन्होंने देखा 500 एक महीने में उन्होंने घरों तक पहुंच गए, और 500 में से 5-10 ऐसे हैं जो फिर आने लगे। तो ऐसे ये साल में हम ये संकल्प करें भाई हम 500 घरों तक कीर्तन करने के लिए पहुंचेंगे, ऐसा कोई संकल्प इसमें हमको करना है कि हम प्रचार कैसे बढ़ाएं। महाप्रभु के संन्यास हमारे लिए प्रचार के लिए हमारे अंदर में बहुत ज्यादा पीड़ा होनी चाहिए कि लोग इतने दुखी हो रहे हैं और हम आराम से यहां बैठ के सुखी क्यों बैठे। लोगों का दुख नहीं देखा जाए ये वैष्णव की पहचान है। लोग दुखी है कि नहीं है बाहर, कितने दुखी है, सुबह से शाम तक बेचारे परेशान लटके हुए बसों में इधर से उधर जा रहे हैं, केवल इसलिए कि वो भगवान से बेमुख है। तो उनको जाके भगवान का संदेश हम कैसे दें, इसके लिए महाप्रभु ने ये योजना बनाई कि मुझे संन्यास लेना है। तो हम भी ये कम से कम कर सकते हैं कि इस साल में हम 10 जगहों तक जाएंगे प्रचार करने के लिए, छुट्टियों में 10 दिन छुट्टी लेके किसी एरिया में जाके प्रचार करेंगे। जाके प्रयास करो, कुछ घर घर में जाके प्रचार करने का प्रयास करो। महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो इस साल में अधिक से अधिक प्रचार करने की कोई योजना बनाओ। आंखें बंद करके चले जाओ किसी गांव में, उठा के खड़ताल बैठ जाओ और कीर्तन करो। ऐसे प्रचार जब किया तब उस प्रचार से बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ। लोग बुलाते हैं, फोन करते हैं, गाड़ी भेजते हैं, फिर हम प्रचार करने जाते हैं, वो लोग हमको खरीद के ले जाते हैं, वो हमारा सम्मान नहीं करते। आपने देखा है उसको, वो हमको खरीद के जाते हैं, कहते जैसे द टेक इट ग्रांटेड है, हमारे घर में मैं लेके दिखाता हूं साधु कहां जाएगा, अभी जा बेचता हूं गाड़ी। ये लोग हमको, आप जाओ उधर और पेड़ के नीचे गांव में बैठ के कीर्तन करो, लोग आके बैठेंगे, उनको जब कथा सुनाओगे उनके हृदय में परिवर्तन आए, क्योंकि वहां आपके जाने का उद्देश्य दूसरा। महाप्रभु के प्रचार का, संन्यास का प्रचार ये है। आंखें बंद करके बोलो कहीं जाके मुझे शुरू करना है एक प्रीचिंग सेंटर, 2 दिन जाके वहां सत्संग करो। कैसी स्थिति है, कौन घर में रोकता है, आपको पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा प्रचार आप में से कभी किसी ने किया है, इसका अनुभव है किसी को? हम तो ऐसी गाड़ी लेकर पाकिस्तान में चले जाते थे प्रचार करने, कहां रुकना है मालूम नहीं है, कौन कहीं से आ जाता था, कोई जगह मिल जाती थी रुकने की, अपने आप लोग इकट्ठे होते थे। उसमें जो सुख और आनंद मिलता था वो बुला के ले जाके हमको माला पहनाते उसमें नहीं आता है। इसमें हम ओबलाइज हो जाते हैं, उसमें वो ओबलाइज होते हैं कि हमारे घर में आके हमको सिखा रहा है। ये दृष्टिकोण से आप कुछ चीजें अपने स्तर के ऊपर बनाओ। आंखें बंद करके कहीं चले जाओ, भले हफ्ते में एक दिन जाओ, सही 50-100 किलोमीटर दूरी के ऊपर किसी गांव में चले जाओ, और गांव के लोग बहुत सम्मान करेंगे और बहुत प्रेम के साथ कथा सुनेंगे, और उनको जरूरत भी है, वहां थोड़ी सी संस्कृति अभी बची हुई है। तो सोच लो कि भाई कम से कम महीने में 15 दिन में एक बार जाएंगे, फिर उसको दोबारा जा, कुछ करो जीवन में। महाप्रभु की दृष्टि संन्यास की यह है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये संन्यास का ये एक आप एक लाइन में इसका अर्थ है, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। हरे कृष्णा, जाना है। चेतना महाप्रभु की, संकीर्तन आंदोलन की, श्री प्रभुपाद की, माता जी लोग आप भी प्रचार करो, गांव गांव में जाओ, घर घर में जाओ, निकल जाओ, 2-2 कट्ठी होकर, अकेली मत जाना, 2 कम से कम जाना। हरे कृष्णा। टाइम आपका है, हमारा नहीं। हमको स्कूल जाना है, हमारी क्लास लगनी है। Ha ha ha.